Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aaj Makar Sankranti ka divas hai. रात्रि में उत्तरायण सूर्य आए हैं तो वैसे तो 14 जनवरी निश्चित होता है, लेकिन आज रात में आया है तो इसलिए 15 को विशेष रूप से मनाना चाहिए। आज से शुभ कर्म प्रारंभ होंगे, विवाह की, जनेऊ की इत्यादि मुहूर्तें निकलती हैं, दीक्षा का भी अच्छा मुहूर्त माना गया है। असल में ये संक्रमण क्या है, गंगा जी रहती हैं, गंगा जी में रहता है मकर, और गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, तो ये भगवान के चरणों की याद दिलाने वाली है। ये गंगा जी भगवान की चरणों से निकली और भगवान में गई, भगवान सोते हैं समुद्र में, भगवान से निकली भगवान में गई, तो गंगा जी की याद आती है मकर से। गंगा पवित्र है, भाव है, ज्ञान स्वरूप माना गया है, तो आज के दिन शुभकामना व्यक्त करता हूं भगवान विश्वनाथ आपकी गति रति मति। अब 6 महीने तक ये संक्रमण रहेगा, बुद्धि में, मन में होती है भावना, बुद्धि में होता है निश्चय। निश्चय ज्ञान अपनी आत्मा का, बुद्धि का काम है। बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है, मन धारणा करता है, भावना करता है, तो ये धारणा का दिन है। आज के दिन व्यक्ति के जीवन में एक निश्चय होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प क्या हो, शिव संकल्प मस्तु। ओ, आज के दिन यदि हम ये संकल्प लेते हैं तो हमारा फिर ये मकर संक्रांति आषाढ़ शुक्ल पक्ष तक रहती है, जब कर्क की आती है तब दक्षिणायन होते हैं, और ये उत्तरायण है। उत्तर माने होता है प्रश्न का उत्तर, समाधान। तो हमारे जीवन में प्रश्न क्या है, प्रकृति के साथ हम मिल गए, माया के साथ मिल गए, तो माया प्रकृति से राग हटकर भगवान में अनुराग जुड़ जाए, इसीलिए गंगा का संकेत बताया। भगवान में जब अनुराग जुड़ जाएगा तो हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। इसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उत्तरायण कहा गया है। आयन माने होता है आश्रय, घर, और उत्तर माने समाधान। हमारे जीवन का समाधान क्या है, ये उत्तरायण का अर्थ है। तो आप लोग वेदांत सुनते ही रहते हो, कभी कभी जरा नमकीन खाते खाते मिठाई की आदत होती है, मिठाई खाते खाते नमकीन की आदत होती है, तो आज हमारे वैष्णव संत विश्वबंधु दास जी महाराज विराजमान है, तो 10 मिनट तक आप उनकी चर्चा सुनने पड़े।
बोले श्यापति राम चंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वीर बजरंग बली की, जय जय श्री सीताराम। मैं तो पहले ये कहूं मैं इसके काबिल नहीं हूं कि महापुरुषों के बीच इनके नजदीक में मैं कुछ कह सकूं, लेकिन इनका आदेश है, महापुरुषों का आदेश तो मानना ही पड़ेगा ना, इसलिए आइए। मैं तो भगवान श्री राम के भक्त हूं, इसलिए मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। ओम सर्वासा श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति रामेन प्रतिहन्यति कलिमलम् रामाय कालजम् नमः रामात् त्रस्यति कालधीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। हम लोग हिंदू हैं, आज बहुत दिनों के बाद आज सवेरे मैं उठा तो एक श्लोक ध्यान में आ गया, बहुत पहले का पढ़ा हुआ। मैं सोचा कि महाराज जी के नजदीक जाना है तो उनसे करेक्शन भी करा लूंगा, ये ठीक है कि नहीं। संयोग से आज उसी श्लोक का मैं वाचांतर कर रहा हूं। हिंदू हम हैं, कैसे हिंदू हैं? बहुत वर्षों पहले किसी संत के मुंह से मैंने सुना था, ह न अद तीन शब्द है इसमें, तो उन्होंने विवेचन किया था हिंसनाथ नमनाथ और दोगधात, है ना? ये तीन से ये हिंदू शब्द बना। हीनस्ति यश दुर्वीरता सदा साधुन नमस्यति दोग्धे याचक कामांश तम हिंदू चक्षते बुध। यानी हिंदू उसको कहते हैं जो दुष्टों को संहार करता है, दुष्ट वृत्तियों को संहार करता है और हमेशा संतों के चरणों में जाकर के नमन करता है, और याचक यदि उनके पास आते हैं तो उनके कामनाओं को पूरा करता है। ये हिंदू शब्द का उन्होंने विवेचन किया था। तो इसमें हमारे श्री राम जो हैं सबसे खड़े उतरते हैं। एक मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवत में आया, जीवस या संसर्तो विमोक्षनाथ न जानतो अनर्थवहात शरीरतः लीलावतारे स्वजसा प्रदीपकम ताज्वालयत्वा तमहम प्रपद्य। यानी इस भगवान श्री राम भगवान का जो भी अवतार होता है उनका ये लीला मनुष्यों के लिए होता है। मनुष्य नहीं जानता कि क्यों जन्मों जन्म से वो इस मानव जोड़ी में आता या भिन्न भिन्न जोड़ियों में आता जाता रहता है। आज अपने लीलाओं के द्वारा वो बतलाते हैं दीपक जला करके, दीपक से जैसे प्रकाश होता है उसी ढंग से वो अपने लीलाओं के द्वारा हमें आप लोगों को बताते हैं कि आप भी इसी प्रकार चलोगे तो आप भी मुक्त हो जाओगे। जैसे मैं मुक्त हूं ऐसे आप भी मुक्त हो, लेकिन आप जैसे ये प्रकृति के बस में हो गए हो, स्वभाव के बस में हो गए हो। इसीलिए भगवान श्री राम भीष्म जी विभीषण जी के जब वो बेचैन हो जाते हैं रावण को देख करके, रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। तो उन्होंने पहले कहा कि ये रथ रथ नहीं है, रथ के जैसे एक अलग ही रथ है जिसे विजय होता है, आप यह सो अधर्ज मत हो। उसमें उन्होंने प्रथम जैसे रखा था सौरज और धीरज, यानी ये सौरज है तो यही है स्वभाव विजय, यानी प्रकृति का ही नाम स्वभाव भी है ना। तो जीव जो है अपने स्वभाव पर कैसे विजय प्राप्त करे, इसके लिए भगवान श्री राम ने अपने कर्मों के द्वारा हमें आप लोगों को बताया कि ऐसे करेंगे तो हम अपने ऐसे ही आप भी चलोगे तो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करके मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री राम ने वही किया, अपने विचार, उन्होंने अपने को किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया, लेकिन जब गुरुदेव आते हैं विश्वामित्र तो ले जाते हैं जय की रक्षा के लिए। अब पहला प्रथम जासो तारिका मिलती है, कहा कि इसे मारो, कहा कि गुरुदेव ये तो नारी है, नारी को कैसे मारो, कहा कि मेरा ही आज्ञा है ना, ये नारी तो नारी है ही नहीं। समझाया कि जिसमें ममता नहीं वो नारी कैसे, ये तो आज इसके अपने बच्चे नहीं है, अपने बच्चे होंगे आज दूसरे के बच्चे वो खाता है, कल यदि दूसरे के बच्चे नहीं रहेंगे तो अपने बच्चे को भी खाएगा, इसलिए नारी नहीं। तो गुरु ने जब कहा, आदेश दिया, पूछा उनसे, संशय हुआ तो जाकर के प्रथम व्यासो वहीं शुरू की। इसके बाद जो भी लीला उन्होंने की सब गुरुओं से पूछ करके। दूसरा प्रस्थान जब हुआ वन की ओर तो सबसे पहले जाते हैं कहां, ऋषि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, उनके चरणों में नमन करते हैं और पूछते हैं कि महाराज मैं किस रास्ते से जाऊं। यानी हमें भी अपने जीवन में संतों के बीच जाकर के जहां कहीं भी संदेह हो वहां जाकर के बराबर संतों के चरणों में जाकर के पूछना चाहिए, कहीं भी रुकावट हो गुरुओं के बीच में रह करके गुरुओं से पूछे और जैसा वह समाधान दे वैसा करे। वैसे ही नहीं, जब आगे जाते हैं प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि राक्षस को मैं विहीन करूंगा, रावण को मारूंगा ही, राक्षस विहीन करने की बात हुई तो उसके क्रम में भी वो संतों के आश्रम में ही जाते हैं, रहने की बात होती है वहां भी वो पूछते हैं, संतों से ही पूछते हैं। तो जहां भी गए अंत में अगस्त ऋषि के यहां जाते हैं, उनसे भी कहते हैं कि रावण का संहार कैसे हो, तो उन्होंने तर्कस और व्यास धनुष दिया। उसके बाद यदि वो भूल गए गुरुदेव तो अंत में लड़ाई के मैदान में जाकर के आदित्य कवच का उपदेश देते हैं और तब व्यास रावण को संहार करते हैं। तो महाराज जी ने मुझे कुछ कहने के लिए कहा, मैं थोड़े शब्दों में आप लोगों के बीच में श्री राम के द्वारा अपना विचार आप लोगों के बीच रखा। आप लोग भी गुरु चरणों में रह करके बराबर जो भी जीवन की कठिनाई हो श्री राम की तरह संतों के चरणों में रह करके उनसे उपदेश लेकर के और जो भी समस्या हो जीवन का आप उनसे समाधान करा दे। इतने ही कहकर के अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। बोल श्यापति राम चंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वीर बजरंग बली की, जय जय श्री सीताराम।
नारायण 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 नारायण। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, आइए कैवल्योपनिषद पर आते हैं। कल आपने सुना था, एक बार उसी को फिर समझ लेते हैं। अचिंत अव्यक्त मनंत रूपम, कैसा परमात्मा है? अचिंत है, अर्थात त्रिपुटी में नहीं आ सकता। ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान धे, इस त्रिपुटी में नहीं है। और अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। आपको बताया जो सत्य है वो बोला नहीं जाता, और जो बोला जाता है वो सत्य नहीं होता है, वो तो सत्य के आसपास घूम आ जाता है। और अनंत है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं सब शांत हैं। अंतेन सहितम इति शांतम, सब शांत हैं, तो ये अनंत है। और अनंत वस्तु का अगर अंत मिल जाए तो फिर कहीं क्यों जाए, वो तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। एक दिन मच्छर जी में और गरुण जी में बहस हो गई, उनका हम ज्यादा तेज दौड़ते हो क्या, हम ज्यादा तेज दौड़ते, तो मच्छर जी भी अपने दौड़े और गरुण जी भी दौड़े, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दौड़ लगाए। मच्छर जी तो अपने थोड़े बहुत देर घुन घुन आए और अपने आ गए, बोले ठीक है भगवान अनंत है। और गरुण जी उड़ते उड़ते बहुत परेशान हुए, काफी दिन बाद आए, बोले अरे तुम पहले ही आ गए, बोले हमें इतनी देर थोड़ी लगती, हम बहुत तेज दौड़ते हैं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दौड़ता है व्यक्ति, जिसमें जो सामर्थ्य है और उसके अनुसार वो अपनी दौड़ लगाता है, लेकिन दौड़ अंत में अनंत ही कहना पड़ता है, वो अनंत है। और शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम, शिव है, क्योंकि ये संसार की बातें हम आपको निवेदन किया था कि संसार में अर्थात तो संसार जब हम कहें तो कहो शरण में, सरकता जो रहता है, गच्छति ती जगत सरन्ति शरणम सरह, ये जो शरण हो रहा है सरक रहा है उसी का नाम संसार है, उसी से सड़क बना है। सरन्ति जना आयान्ति यान्ति च जत्र इति सड़क, जहां लोग आते और जाते हैं उसको सड़क बोलते हैं। तो इस सड़क ही तो है संसार, कोई आ रहा है कोई बिस्तर बांधे है कोई जा रहा है, बिस्तर बांधे और आना और जाना लगा ही रहता है। जगत में जो आता सदा रह न पाता, जगत में जो रहता सदा सो न आता न जाता, रहता ये नियम है कि आत्मा का कभी आना जाना नहीं होता, इसलिए वो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है और प्रशांत है। क्योंकि कामना कीचड़ में फंस करके ही अशांति आती है, सशांति मापनोति न काम कामी, ये निश्चित है। जब आप कामना के कीचड़ में फंस जाते हैं तभी अशांति आती है, नहीं तो आपका शांत स्वरूप है आप। ब्रह्म योनिम का मतलब ये जगत का मूल कारण परमात्मा ही है, यदि मूल कारण परमात्मा को न मानते तो प्रकृति हो जाती अथवा परमाणु हो जाते, तो जड़ पदार्थ न होने पावे इसको निषेध करने के लिए और अद्वितीय परमात्मा ही एक रहा है इसके लिए कारण मान लिया थोड़ी देर के लिए, है नहीं कारण कार्य, उसमें न कारण है न कार्य है, लेकिन मान इसलिए लिया अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए। तथादि मध्यांत विहीनमेकम् विभुम चिदानंदम रूपम अद्भुतम्, कहते हैं फिर क्या बताया, बोले अनादि है तो अनादयस्तु खडस्माकम् अनादया, अनादि तो और भी बहुत सी चीजें हैं, जीव है जगत पति है और जीव और जगत का भेद है, ये सब अनादि है। जाने कब से जीव जगत का और जगत ईश्वर का भेद चला आ रहा है, बोले है अनादि तो ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें अनंत नहीं है, ये शांत हैं, एक दिन खत्म हो जाने वाली है, इसलिए ये अनादि परमात्मा आदि कब से हुआ। मान लीजिए अगर आप मानो कि ज्ञान कब से हुआ, ज्ञान कब से हुआ ये अगर हिसाब लगाओ तो अगर सृष्टि के पहले से ज्ञान हुआ तो पहले क्या अज्ञान था। अच्छा अगर मान लो नहीं हुआ तो उसको अनादि ही मानना पड़ेगा, तथा अनादि अनंत और मध्य, इसका कहीं आदि अंत मध्य है ही नहीं। अगर आत्मा का मध्य मानोगे, अंत मानोगे, आदि मानोगे, तो आपको वस्तु माननी पड़ेगी, पदार्थ मानना पड़ेगा। जो पदार्थ, जो वस्तु मुझसे भिन्न है, उस पदार्थ में ये लक्षण होते हैं, और लक्षण वो होता है जिसमें व्याप्ति, अतिव्याप्ति, विविचार आदि दोष न हो। देखो, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, पैर छोटा, जूता बड़ा। अब जूता अगर बड़ा है तो पैर है, जब उसमें डालोगे तो अतिक्रमण हो जाएगा, ये अतिव्याप्ति है। और आप बताइए, पैर बड़ा, जूता छोटा, तो कब पैर काटोगे? पैर तो नहीं काट सकते, उसमें जाएगा ही नहीं। तो ये अव्याप्ति हुई। और कहीं ना लगे लक्षण वो असंभव होता है, और कहीं लगना चाहिए वहां तो न लगे, और जगह लग जाए, वो व्यभिचार होता है। तो लक्षण जब करते हो, अनादि मध्य और अंत से हीन, विहीन, वो रहित है, तो इसमें किसी प्रकार का आत्मा में अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष नहीं जाता है, दोषहीन है। इसलिए एकम एति सर्वेषु पदार्थेषु इति एकः, संपूर्ण पदार्थों में जो जाए और उसमें कोई न जाए। एक की संख्या एक ऐसी है, एक प्लस एक बराबर दो, एक प्लस एक बराबर प्लस एक तीन, तो एक तो सब गिनती में जाता है, लेकिन दो नहीं जा सकता एक में, न तीन जा सकता। तो सब सब में जाए और उसमें कोई न जाए, वो एक एक अर्थ ये हुआ। और दूसरी बात मुख्य ये है कि सत्ता एक मानोगे कि दो? अगर सत्ता दो मानोगे तो दोनों में कुश्ती होगी, तो भी एक ही रह जाए। दो सत्ता एक तो अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं हूं ये प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है। तो वो जो मैं की सत्ता है, अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस है, वो तो सब में है, और सब सत्ता एक है, संपूर्ण पदार्थों में अन्वित है। एति सर्वेषु पदार्थेषु यथा मृत्तिका, जैसे मिट्टी कितने भी सुराही घड़े बनाए जाएं, सब में जाएगा। और मजे की बात है कि सुराही में तो जाएगा ही और चिलम में भी जाएगा, दोनों में अंतर है ना। सुराही ठंडी है और ठंडा करती है, और चिलम जलती और जलाती है। तो वो जो आत्मा है, वो एक चिलम की तरह जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है, दुर्योधन आदि को, उनमें भी है, और धर्मराज में भी है, शांत में भी है, अशांत में भी है, वो तो सब में है। तो जो सब में है, एक नियम होता है, जो व्यापक पदार्थ होता है उसमें आकार नहीं होता है, आकार की कल्पना की जाती है भावना से, ये नियम है। जो व्यापक तत्व होगा उसमें आकार कैसे हो सकता, वो तो व्यापक है भाई, सब जगह है। तो सर्व व्यापकता निवृत्त ना हो, नष्ट ना हो, इसलिए एकम कहा गया, एकम अद्वितीयम। एति सर्वेषु पदार्थेषु, सब पदार्थों में तो जाए और उसमें कोई न जाए। तो आत्मा हमारा ऐसा है, एक है। तो तथादि मध्यांतम अनंतम एकम, और फिर कहा विभुम चिदानंद मरूपम अद्भुतम। विभुम माने व्यापक।